अम्मी, वो आपको हाजी हुसैन साहब याद हैं जो हमारे लिए दूध लाया करते थे? वही जिनके लिए बाबा ने सीढ़ियों के नीचे एक दुकान खरीद ली थी, बच्चों के कपड़े फरोख करते थे। उन्हें पता नहीं था बाबा के इंतकाल का। कुछ दिनों कबल उन्होंने फ़ोन किया, बहुत उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वो कह रहे थे कि उन्होंने बाबा की दी हुई दुकान से अपनी बेटी का जहेज़ भी पूरा मुहैया किया और शादी करवा दी, छोटी लड़की के लिए भी यूनिवर्सिटी की तालीम भी दिलाई।
खुदा का शुक्र है।
बाबा ने बहुत से बेसरपरस्त घरानों की लड़कियों के लिए जहेज़ फराहम किया था। हाजी अहमद वो सब कुछ जानते हैं। उनका कहना है कि किस कदर लोगों ने बाबा के ईसाले सवाब के लिए सूरे पढ़े और नमाज़ें पढ़ी, जिन लोगों को उन्होंने जहेज़ दिया था, जिन लोगों को घर खरीद के दिया था। बाबा तो सबकी मदद करते थे, खुदा उनकी मगफिरत करे।
ठीक कह रहे हो बेटा।
मुझे इत्मीनान है कि ये करीमे साहिबा को भी बाबा ने देखा होगा, और जब उनकी हालत देखी होगी कि बहुत बुरी हालत है, तो उनकी मदद की होगी। अब वो काम ही तो कर रही थी, घर खरीद के दे दिया ताकि वो गुड़िया बना सकें। मुझे क्या पता बाबा ने कितने लोगों को घर खरीद के दिए हैं, उन्हें घर का मालिक बना दिया है। बहुत से लोगों को तो जानते भी नहीं।
हाँ बेटा, हाँ।
अलबत्ता इन साहिबा के लिए एक और बात है, और वो ये है कि करीमी साहिबा धोखेबाज हैं। पता नहीं, हो सकता है किसी तरह से बाबा को धोखा देकर ये घर हड़प कर लिया, उसके बाद उन्हें खबर मिली कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने सोचा होगा इस मौके से फायदा उठा लें, अंधेरे में एक तीर मारते हैं, शायद निशाने पर लग ही जाए, है ना? आप भी तो कुछ कहें।
हाजी मुर्तजा बहुत अच्छे आदमी थे, खुदा उनकी मग़फ़िरत करे।
अभी पुदीने की चाय बनाता हूँ, आपकी थकन दूर हो जाएगी। अम्मी, अम्मी,
थैंक यू।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी दिन होगा कि मेरी जबान पर आपके लिए बेईमान का लफ्ज आए। अब भी मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती, इसी वजह से आपको बेमुरव्वत कहती हूं, क्योंकि आपने मेरे हक में मुरव्वत नहीं की है। लेकिन मैंने आप ही से सीखा है कि बेवफाई का जवाब बेवफाई नहीं होता। मैंने कितना आपसे कहा था कि अगर बच्चा चाहिए तो शादी कर लें। मैंने कहा था मैं खुद रिश्ता लेके जाऊंगी आपका, लेकिन आपने कहा नहीं, बस मेरा चेहरा देखते थे और इनकार कर देते थे। पता नहीं क्यों, शायद शर्महाया माने थी। मैं इसे आपकी शर्महाया ही कहूंगी। जानते हैं, मैं जब खुद को आपकी जगह रखती हूं तो सोचती हूं कि मैं भी एक रोज आपको वही जवाब देती जो आप देते थे। इसी वजह से मैं आपको बेमुरव्वत कहती हूं। आपने मेरे हक में बेवफाई की है। बहरहाल जो हो गया वो हो गया। अब तो हमारी जिंदगी में मजीद दो अफराद आ गए हैं। मैंने तो हमेशा ही आपकी मदद की है, हमेशा पुष्पना ही की है, अब भी करूंगी। आपकी रूह को बेचैन नहीं होने दूंगी। जिस तरह मैंने इस दुनिया में आपको गमगीन नहीं होने दिया था, वैसे ही आखिरत में भी परेशान नहीं होंगे।
ये तस्वीरें हमें काशान की पुलिस ने भेजी हैं। बेजाहिर इस गाड़ी को शहर के बाहर किसी वीराने में आग लगाई गई थी, ऐसे मकाम पर जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी।
तो क्या
इस गाड़ी की तफसीलात उस गाड़ी से मिलती है जिसने आपके वाली साहब गाड़ी को टक्कर मारी थी? अलबत्ता यह भी जहन में रहे कि इस गाड़ी को 6 महीने पहले चुराया गया था, उसके मालिक ने हमारे पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
यानी दोबारा कोई नतीजा नहीं निकला।
बहरहाल हमारी तहकीकात जारी है। आप क्या सोचते हैं कि गाड़ी चोर किस वजह से गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता था?
पता नहीं।
इस केस की इब्तिदा एक सादा से एक्सीडेंट से होती है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता में मुख्तलिफ चीजों का इजाफा होता है। मेरे ख्याल में एक हादसा होगा जिसकी वजह से गाड़ी को आग लगा दी गई थी।
यानी आप सोचते हैं कि चोरों ने यह देखा कि बाबा मर चुके हैं तो उन्होंने गाड़ी को आग लगा दी।
बहरहाल तमाम इम्कानात को मद्देनजर रखना चाहिए।
देखिए, मेरे बाबा एक आम आदमी थे, उनके जानने वालों में कोई होगा जिसने समझ लिया कि बाबा मर गए हैं।
शायद एक मरतबा बाबा के दफ्तर में देखा था, उसे नोट कर लें।
मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कुछ कहो, सिर्फ मेरे साथ चलो बस। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं।
किस काम के लिए?
मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने। खुदा हाफिज बेटा।
हाजिया साहिबा।
फरुख जान, मैं एक जगह जा रही हूँ, शायद रात में भी वापस ना आऊं।
सफर पर जा रही है?
हाँ बेटी।
कहाँ जा रही है?
बाद में आके बताऊंगी।
ठीक है, अपना खूब ख्याल रखिएगा प्लीज।
ठीक है, परेशान ना हो। اسماعیل میرے ساتھ ہیں، اگر تمہیں کوئی کام ہو تو میرے موبائل پہ فون کر لینا۔
ایک منٹ رکیے گا۔
خدا حافظ۔ خدا حافظ خالہ ملیحہ۔
خدا حافظ میری بیٹی، ماں کو نہ ستانا، سمجھی؟
جی ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا۔
یہ لیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔
خدا حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا۔
خدا حافظ خالہ۔
جب اس پک اپ کی تصویر دیکھی تو مجھے بابا کی بہت یاد آئی۔ میں یہی بار بار سوال کر رہا ہوں کہ ان کے نصیب میں ایسا انجام کیوں لکھا تھا۔ بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ نے تو انہیں خواب میں بھی دیکھ لیا۔
ان کی حالت اچھی نہیں تھی اسماعیل، اس وقت کی طرح جب وہ کبھی کچھ کہنا چاہتے تھے اور کبھی کہہ نہ سکے۔
آپ اپنے خواب کی وجہ سے کاشان جا رہی ہیں۔
ہاں، تمہارے باپ کا خواب، کرج کا گھر، وہ سارے واقعات جو ان دنوں پیش آئے ہیں۔
جانتی ہیں امی، دراصل یہ ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی بات سے پریشان ہیں، لیکن شرم و حیا سے آپ مجبور ہیں۔ مجھ سے بتا دیجئے، اگر واقعی سوچتے ہیں کہ آپ کو آرام ملے گا تو مجھے بتا دیجئے۔
میں جانتی ہوں کہ تمہیں بعض چیزیں معلوم ہو چکی ہیں، جانتی ہوں۔ میں نے تمہیں براہ راست اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ یہ چیزیں گلے اور شکایت کا سبب نہ بن جائیں۔ مجھے اگر کسی سے شکایت ہے تو میں اس شخص سے کہوں گی یا پھر اس کے خدا سے کہوں گی۔ البتہ تمہیں بھی اس رودات کو جاننے کا حق ہے میرے بیٹے، اسی لیے تم اس وقت یہاں پر ہو۔ بتاؤں گی، میں ساری باتیں تمہیں بتاؤں گی۔
اسماعیل،
بیگم ناہید کریمی صاحبہ مرتضیٰ کی بیوی ہے اور ان سے ایک بچہ بھی ہے۔
وہ رہی حاج غلام رضا نامی گلی، ہو سکتا ہے ورک شاپ بھی اسی گلی میں ہو۔ امی، کیا تہران واپس چلیں؟ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، میں یہی سوچوں گا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔
فراموش کرنا فرار کرنے کے برابر ہے، ہم ایک فراری کی طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے نا بیٹا۔ اس کے علاوہ ہمیں وراثت میں ان کا حصہ بھی تو دینا ہوگا۔ جلدی واپس آؤں گی میں۔
हेलो करम, अस्सलाम वालेकुम, बेदार हो, सो रहे हो? हाँ
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिएगा मोहतरमा, क्या ये गुड़िया बनाने की वर्कशॉप है?
क्यों?
मुझे नाहिद साहिबा से काम था, नाहिद करीमी, क्या वो घर में है?
आप
मैं उनकी एक दोस्त हूँ।
तो तुम कैसी दोस्त हो के नाहिद की नानी को नहीं पहचानती? हाँ मैंने भी तुम्हें अब तक नहीं देखा था।
हाजी साहिबा, मैं मरहूम मुर्तजा की बीवी हूँ, मुर्तजा नद्दाफ। हाजी साहिबा, मोहतरमा, खोलें दरवाजा।
नाहिद मर गई है।
मेरी बात तो सुने ना आप, जरा दरवाजा खोलें।
नाहिद मर गई है, हमारा पीछा छोड़ दो, हमें आप लोगों से तो कोई काम नहीं है, जाएं, जाएं अपना काम करें।
मैंने कहा ना यहाँ से हटाओ इसको, चले जाओ यहाँ से, हटाओ यहाँ से, अरे छोड़ो यहाँ, अरे मैंने कहा ना हटाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी तो कुछ दूंगा मैं, हट जाओ तुम, हट जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चलो भाई सुनो शक्ल,
चलो भाई,
शर्म नहीं आती तुमको? शर्म आनी चाहिए इस्माइल बेटा, तुम अपना ऊपर उठाओ सर, सर ऊपर उठाए रखो, मैं भी पुलिस को फोन करती हूं।
अरे मोहतरमा आप जाइए, ये करम पागल है,
अरे छोड़ मुझे, ये देखिए उसको,
जाइए जाइए
इसको देखता हूं मैं,
क्या कह रहे हो तुम, हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ।
अरे तुम्हारे मैंने कहा ना तुम क्या कर रहे हो, चले जाओ, हटो यहां से,
लड़ाई मत करो भाई, लड़ाई मत करो,
चलो बेटा,
कौन था ये अजीब
आदमी, चलो गाड़ी बैठो, गाड़ी बैठो,
मेरा पुलिस ने क्या कह रहा था बच्चा, जो भी रहा
आ जाएगी अभी, जाओ,
बदमाश कहीं के यहां आए हो हमसे लड़ने,
कुछ ना यहां
जाओ, यहां जाओ, लड़ाई मत करो, जाओ, लो अच्छे लोग नहीं है, जाओ।
ठीक हो तो रुको,
पता है इस अहमक ने क्यों इस तरह हमला कर दिया?
मैं उसे जानती हूँ।
किसे? इस लड़के को?
नाहिद करीमी का फूफीजाद भाई है, इसका नाम करम है। उस आदमी ने जिसने लड़ाई में तुम्हें बचाया था ना, वो कह रहा था कि महल्ले में से करम कल्ला कहते हैं। जवाब नहीं दे रही है नाहिद करीमी।
मेरे ख्याल में अम्मी तो इनको छोड़ दें, इसका घराना हमारे लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा।
उठा नहीं रही है फोन, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं नाहिद करीमी से कोई रिश्ता ही नहीं रखती। मेरे बेटे नाहिद करीमी मुर्तजा की बीवी है, शरी बीवी, तो क्या हुआ उसका हक उसे ना दिया जाए? पानी पियोगे?
अम्मी इन लोगों ने आपको घर में भी जाने नहीं दिया, बीवी होने का मसला भी तो हल है, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, अगर उन्हें अपना हकूक चाहिए तो वो आकर ले लें।
अगर तुम्हारे बाबा मरहूम जिंदा होते तो तुम ही बताओ वो क्या करते।
पता नहीं, बाज मौकों पर सोचता हूँ कि मैंने बाबा को नहीं पहचाना,
लेकिन मुझे अपनी जगह यकीन है कि वो इस मसले को जरूर हल करते।
मेरे ख्याल में तो वो आकर इस गुंडे से न भिड़ते। अम्मी जान, मैं समझता हूँ कि बाबा नहीं चाहते थे कि हम इन लोगों से मिलें, इसी वजह से उन्होंने हमें उनके बारे में नहीं बताया। अब इस किस्से को खत्म करें।
इत्तेफाक से बरक्स है, वो हमें सब कुछ बता देना चाहते थे लेकिन मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी। वो अपने एक्सीडेंट से पहले इसी वजह से परेशान रहते थे। चलो रिपोर्ट लिखवाने जाना है।
अब रिपोर्ट किस लिए?
नाहिद का फूफीजाद उसे सता रहा है, मैंने खुद तेहरान में देखा था, वो उसे सता रहा था।
अम्मी आपको सब कुछ मालूम था, मुझे एक लफ्ज भी नहीं बताया।
मेरे बेटे, मैं भला नाहिद को कहाँ पहचानती थी, उसने मेरे चंद जलसों में शिरकत की थी बस यही,
लगता है ये साहिबा कुछ ज्यादा ही तेज है।
इस्माइल,
क्या हमारा पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है? अगर इस गुंडे को पता चल गया कि रिपोर्ट हमने लिखवाई तो हमें तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन उस औरत को जरूर सताएगा।
जी नहीं, उसके बरक्स होगा। अगर हम रिपोर्ट ना लिखवाएं तो वो ये सोचेगा कि हम लोग डर गए।
अंदर नहीं चलेंगे अम्मी।
जाओ तुम जाओ बेटा।
अम्मी आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं?
हाँ।
तराना ने आपके बारे में कुछ बातें कही थीं कि आप आखिरी दिन अस्पताल में बाबा के पास थीं, सही है?
उस दिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि नाहिद उम्मीद से है तो मुझे यकीन हो गया कि मुर्तजा ने उससे शादी की है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं अस्पताल में तुम्हारे बाबा के कमरे में गई और उनसे बहुत सी बातें कर डाली, उनसे शिकायत कर डाली। मैं पागल हो रही थी, अपने गुस्से पे काबू ना पा सकी। खुदा मुझे माफ करे।
काश ये बातें आप मुझे पहले बता देती।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम,
कैसे हैं?
जी हाँ, खुदा का शुक्र है। आप कैसी हैं?
मैं भी ठीक हूँ।
जानता हूँ मुझसे नाराज हैं।
मैं किस वजह से आपसे नाराज होंगी? आपको मुझसे नाराज होना चाहिए। अगर मैं भी आपकी जगह होती और कोई मेरी वालिदा के बारे में इस तरह से बात करता तो मैं नाराज होकर दोबारा उससे बात ना करती।
आपकी बातें सही थीं। अम्मी ने सारी बातें मुझे बता दी।
मुझे जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए था।
बहरहाल खत्म हो गया मामला,
गुजर गया।
आप क्या कहना चाहते हैं?
बेहतर है उसके बारे में बात ना करें।
नदाफ साहब, अगर एक दूसरे से मिलकर बात करें तो अच्छा होगा, ठीक है?
नहीं मालूम, जैसे आपको आसान लगे। तो आप ही
मुझे जगह और वक्त बता दीजिएगा।
ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी। अपनी वालदा को बहुत बहुत सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज।
जी बहुत अच्छा, खुदा हाफिज।
दिन हालात से थक गई हूँ बेटा। अली तुम सोचते हो कि मैं और सारा बहुत आराम से हैं तुम्हारे बगैर? हाँ ऐसा सोचते हो तुम। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। सारा पूछती रहती है कि मेरा भाई कब घर आएगा। अली बेटा मेरा सहारा सिर्फ तुम हो। हाँ
अम्मी मैं सारा नहीं हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ के हाजिया साहिबा के घर ले जाएं और वो मुझे एक चॉकलेट दे और मैं खुश हो जाऊँ। अब मैं बड़ा उठ चुका हूँ, हर किसी के घर पे नहीं रह सकता। ना अच्छा लगता है ना सूट करता है, और ये भी चलता कि आप वहाँ पर रहे।
तुम्हारे सबके जाऊँ बेटा, तुम पर वार ही जाऊँ मैं। मैं जानती हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, मर्द बन गए हो, लेकिन अली मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। आजकल जो किराए लिए जा रहे हैं कितने ज्यादा हैं, इतना किराया नहीं दे सकती मैं।
पास करो, पास करो।
काश खुदा बहमन की जगह मुझे उठा लेता।
अम्मी ऐसे मत कर, बेइज्जती हो जाएगी। मुझे भी अच्छा लगता आप सबके साथ रहे। हम तीनों एक साथ रहे, सिर्फ हम तीन एक साथ। और जब तक घर नहीं ले लेती मुझे ना बुलाएगा। अब जाएं, खुदा के लिए जाएं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
ठीक है बेटा, ठीक है।
अरे यार, हाँ पास करो, पास करो। बोल देना, पक बोल चलो। दो यार, चलो पास करो, खेल भी नहीं पाते हो। हाँ, पास करो, प्लीज।
ए खुदा मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता कि इस परेशानी का कैसे। ओहो एक और मुसीबत
टूट गया मम्मी। नहीं 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 टूटा।
ओफो क्या वाहियात है।
देखो बिल्कुल ठीक है।
अलीपुर साहिबा आप थकी हुई हैं, काम करने की सकत नहीं है, क्या आप घर जाकर आराम करना चाहती हैं?
कौन सा घर मकसूदी साहब, मेरी सारी मुसीबतें इसी दरबदरी की वजह से हैं।
अरे भाई क्या हुआ है, बैठो जरा बताओ क्या हुआ है, किसी से कोई बहस हुई है?
नहीं, मैं अपने बेटे अली के स्कूल गई थी।
फिर
मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, वो मेरा ही तो बेटा है ना।
अल्लाह की पनाह है, औलाद है तो मुसीबत, पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। वो ठीक है ना
मकसूदी साहब? जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते हैं तो क्या खुश नहीं रहते?
क्यों नहीं,
मेरे बच्चे की आंखों में बिल्कुल चमक नहीं थी। ये बात तो जाहिर है, कोई अपने चाचा और चाची के साथ कैसे रह सकता है, मेरा कोई घर नहीं है। इस लड़की को अपने साथ साथ लिए फिरती हूँ। हाजा साहिबा भी सारा को बहुत चाहती हैं अपनी लड़की की तरह, लेकिन अली को तो मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब वो बड़ा हो चुका है, वो अपना गुरूर नहीं तोड़ना चाहता। मेरा बच्चा सही कहता है।
मम्मी गाहे का है।
ए खुदा आप क्या।
अब जाइए अपना हाथ मुंह धो लीजिए, सुकून से बैठिए, मैं ग्राहक को देख लेता हूँ। शुक्रिया खुदा।
खुदा, खुदा, खुदा।
बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया।
सारा कहाँ है?
बच्ची है, यही किसी पलंग पर सो गई होगी।
खुदा दोनों को हयात अता करे। पैसे और घर का मसला तो हल हो सकता है। मैं राजी था सब कुछ देकर, अपनी गुलनाज को एक मर्तबा देख लो। चलिए छोड़िए, आपकी मुश्किलात की तरफ चलते हैं। आपने किस किस इलाके में घर देखा है?
मैं क्या बताऊं, हर घर जो एक अकेली औरत और दो बच्चों के लिए मुनासिब था मैंने देख डाला है, लेकिन इनका किराया बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल सही, घर की कीमतें आसमान को छू रही हैं, रोज बरोज उनमें इजाफा हो रहा है।
जब लोगों को मालूम होता है कि मैं अकेली औरत हूं तो वो नखरों पर उतर आते हैं।
इस मुश्किल को भी हल किया जा सकता है, मैं खुद आकर आपकी जमानत दे दूंगा।
खुदा आपका भला करे।
आपके पास कितना पैसा है?
यानी डिपॉजिट? मेरे पास डिपॉजिट के नाम पर कुछ भी नहीं है, यहाँ तनख्वाह जो आप देते हैं इसी में अपना और बच्चों का खर्च चलाती हूँ बस। खुदा आपका और हाजा खानम का साया बाकी रखे सर पर कि मुझे इस काम पर लगा दिया।
माफ कीजिएगा, मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या आपके मरहूम शौहर ने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा? जमीन, पैसा, कोई इर्स और मीरास?
अब क्या बताऊं आपको?
ठीक है आप?
जहाँ
आपको आराम करने जाना है?
नहीं, मैं ठीक हूँ।
10 मिनट में 20 बार आपने घड़ी की तरफ देखा है, कहीं जाना है आपको?
हाँ, मुझे जाना है।
अगर आपको जाना है तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगी।
ठीक है, शुक्रिया। उस वक्त साहिबा 1 मिनट आएंगी।
जाओ भी। जी
प्लीज यहाँ पर पार्क ना कीजिए।
बहुत अच्छा,
शुक्रिया। मोहतरमा, किसी मदद की जरूरत है?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम तराना साहिबा, कैसी हैं?
मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ करेंगे, मुझे एक एमरजेंसी पेश आ गई जिसकी वजह से नहीं आ सकी। अच्छा,
मुझे असल में जब आप नहीं आए और फ़ोन भी नहीं किया तो तशवीश होने लगी।
इतना काम बढ़ गया था कि आपको फ़ोन भी नहीं कर सकी।
कोई बात नहीं है,
हम लोग किसी और मौके पर आकर मिल सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।
ठीक है, खुदा हाफिज़।
Thank you.
हेलो
हेलो अस्सलाम वालेकुम।
मैंने आपसे झूठ कहा था, मैं यहीं नजदीक ही हूँ,
पुल के पास खड़ी हूँ।
मैं सोच रही थी कि हाजी साहब ने आपको मेरी बीमारी के बारे में बता दिया है।
जी हाँ, बहुत इख्तिसार से अलबत्ता।
जब मुझे आसाबी शौक लगता है तो मेरा बदन बेहिस हो जाता है, मेरे आज़ा सही काम नहीं करते। बाज़ औक़ात सिर्फ बेहिस हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस वक्त की तरह हो जाते हैं, मैं हिल नहीं सकती हूँ, मफलूज हो जाती हूँ। शायद आप मेरी बीमारी के बारे में बिल्कुल अलग तस्वीर रखते हों, शायद इससे बहुत सादा बीमारी समझ रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि मैं बीमार हूँ। अब मेरी ये जो हालत हुई है, हो सकता है इसमें भी कोई हिकमत हो, इसमें आपके लिए कोई अलामत हो। मुख्तलिफ हालात में लोग मुख्तलिफ तरह से फैसले करते हैं। अगर आप मुझसे शादी करने का ख्याल रखते हैं तो बेहतर है हर जाविये से सोच लें।
क्या अभी एम्बुलेंस को फोन करूं?
नहीं, मैंने फोन करके बाबा को बुला लिया है।
बुरा मत मानिएगा, इस हालत में आप क्या करेंगी?
मैं अब ठीक हूँ, मैं अब अस्पताल जाकर कॉटन का इंजेक्शन लूंगी, स्पेशलिस्ट की तशखीस पर मुनहसर है। इस बीमारी के इलाज में डोज अलग अलग होती है, मैं इस वजह से ही बता रही हूँ कि आप अच्छी तरह सोच लें।
आखिर में क्या होगा?
मालूम नहीं, कुछ पता नहीं।
मोनिस फूफी आई हुई है।
मैंने स्माइल से कहा कि मैं बीमार हूँ।
इसी मजलूम नमाई से मेरे भाई के दिल में घर कर गई।
हाजा साहब को क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गई?
अरे कुछ तो कर दिखाओ, कुछ तो कोशिश करें आप।
स्माइल, अपनी माँ के लिए बहुत दुआ।
ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए।
मैं कल से अपने महल्ले और हमसाया लोगों के सामने सर ना उठा सकूं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम्हारे अलावा कोई और भी इस बात से बाखबर है?
मैं अपने भाई के कातिल के दरवाजे पे भीख मांगने जाऊं?
तुम क्या जानती हो, मैं उस जमात के साथ नहीं रहना चाहती जो हर लम्हे मेरे बारे में फैसला करने को तैयार।
एक जरूरी काम है, उनसे रास्ता दीजिए।